डॉक्टर साहब, खून का कैंसर, कैंसर का नाम सुनते ही आदमी खौफजदा सा हो जाता है, और खुसूसन अगर बच्चों में ये मसला पेश आ जाए. हर यानी वालदैन को बहुत अजीज़ होते हैं बच्चे, और तस्वुर करना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो है किसी आम बीमारी में मुब्तला हो जाए, न कि खून के कैंसर में. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें.
ये खून का जो कैंसर है, और ख़ासकर हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, वैसे भी कैंसर एक आम सी बीमारी है और अक्सर लोग जो होते हैं इससे वाकिफ़ होते हैं, लेकिन आजकल हमारा जो मौजू है उसका ताल्लुक खून के कैंसर से है. और खून का जो कैंसर है इसमें बुनियादी तौर पर जो इंसान के जिस्म के अंदर जहाँ खून बनता है या जहाँ से वो खुलिए जो होते हैं या जो सेल्स होते हैं जहाँ से वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पूरे जिस्म के अंदर वो फैल जाते हैं, उधर ऐसी कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से वो जो खुलिए होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं, वो अपने मकदार से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं और उसके जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. और खून के अंदर हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की खुलिए होती है वो तीन तरह के होते हैं. एक इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की खुलिए है खून के, हर एक का अपना एक फंक्शन है, अपना एक किरदार है हमारे जिस्म के लिए, और हर एक का अपनी जगह एक अहमियत है. और ये जो खुलिए होते हैं ये इंसान के जिस्म के अंदर जहाँ बनते हैं इसको हम बोन मैरो कहते हैं. बोन मैरो के अंदर इस तरह कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से इसकी जो लेवल है ये बढ़ जाती है, और ये इस तरह एक सिचुएशन बन जाती है कि फिर इंसान की जो नॉर्मल जो खून का जो फंक्शन होता है या जिसके सेल के जो फंक्शन होते हैं फिर वो मुतासिर हो जाता है वो फंक्शन. मिसाल के तौर पर जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे, जिसका ये मेन फंक्शन होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी के लिए, एक लाजिमी अंसर है, इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है. तो ये जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं जब ये हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, जो फेफड़े होते हैं इधर एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का, ब्लड के अंदर चला जाता है, तो ब्लड में ये जो सुर्ख ज़र्रात होते हैं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये सुर्ख ज़र्रात ऑक्सीजन को पैक करते हैं और पूरे जिस्म में इसको सर्कुलेट करते हैं. इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसका जो मेन फंक्शन है हमारे जिस्म के अंदर, ये एक डिफेंसिव मेकेनिज़म है, एक दिफाई निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर. और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल इस तरह कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, दूसरे जो पैथोजेंस है वो अगर हमारे जिस्म के अंदर घुस जाए तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, उनका ये फंक्शन है कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए. इसके अलावा जो तीसरी किस्म के खून के खुलिए होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स का बुनियादी काम है कि जहाँ अक्सर ज़ख़म हो जाता है या खून बह रहा है तो जो इसकी क्लाटिंग होती है या जो खून जम जाता है इसमें इनका बुनियादी किरदार है, और फिर जो मेश बन जाता है और इसका एक अलग मेकेनिज़म है. तो ये सारे जो खुलिए है खून के, हर एक का अपना किरदार है. तो ब्लड कैंसर में क्या हो जाता है, असल में हमारा जो बुनियादी टॉपिक है इसको हम मेडिकल टर्म्स में ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसके अंदर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल बन रहे होते हैं इसका मकदार हद से बढ़ जाता है, और ये जो सेल्स होते हैं ये इमेच्योर सेल्स होते हैं. मतलब रूटीन में तो इसकी प्रोडक्शन होती है खून की, जो खुलिए होते हैं RBCs, WBCs, लेकिन अपने हिसाब से बनते हैं और फिर वक्त के साथ साथ से मेच्योर हो जाते हैं और ठीक तरीके से अपना फंक्शन करते हैं. लेकिन ल्यूकेमिया के अंदर या खून का जो कैंसर है इसके अंदर सेल बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, लेकिन इमेच्योर होते हैं, और ये सारे जिस्म के अंदर फिर फैल जाते हैं, खून के अंदर फैल जाते हैं, और जो इनका नॉर्मल फंक्शन होता है जिस तरह मैंने हर एक का बताया, ये फिर वो अपना फंक्शन छोड़ जाते हैं ये जो रिस्पेक्टिव सेल्स होते हैं, और एक बर्डन बन जाता है पूरे जिस्म के अंदर सेल का. तो इसकी वजह से फिर जो इनके अलामत होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं खून का कैंसर या ल्यूकेमिया.
डॉक्टर साहब, ये बच्चों में क्यों होता है? बड़ों में तो चले हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे ये फास्ट फूड के बारे में बता रहे थे, गलत तरीके ज़िंदगी, ये सब कैंसर बढ़ रहा है, बच्चों में क्यों होता है ये?
बच्चों में इसके जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर 100% इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो इसमें 40-60% ये बच्चों में रिपोर्ट हो रही है,
अच्छा
क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर इससे मुतासिर होते हैं। और क्यों होता है बच्चों में? क्योंकि बच्चे तो अक्सर नौजायदा बच्चियों में भी ये हो जाता है खून का कैंसर, और इस तरह भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि एक बच्चा पैदा हो जाता है और 10 दिन बाद इसमें डायग्नोज हुआ है ल्यूकीमिया या जो खून का कैंसर है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसके मुख्तलिफ वजूहत है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें कुछ चीज़ें मौरूसी है।
अच्छा
जो उनके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, इसमें इनकी कुछ हिस्ट्री होती है ल्यूकीमिया की, तो वही जो मौरूसियत होती है या जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो चेंजेस आ जाती है और ये चीज़ें मुंतकिल हो जाती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बच्चों तक। तो इसमें बुनियादी बात ये है कि एक इसमें मौरूसियत इन्वॉल्व है।
अच्छा
इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ किस्म की इस तरह कुछ फैक्टर्स है, जो मिसाल के तौर पर स्मोकिंग, अक्सर लोग स्मोकिंग करती है और फीमेल भी स्मोकिंग करते हैं, तो इसका भी एक दुर्रस असर है कि जो ख्वातीन प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं, तो इसका असर जो होता है वो फीटस पे होता है, जो इनके जिस्म के अंदर फीटस बन रहा होता है या जिसको डेवलप हो रहा है, तो इस पे असर पड़ता है। तो दो तीन किस्म की ये इसके वजूहत है कि बच्चों में क्यों हो जाता है ये।
डॉक्टर साहब, एक सवाल भी हम लोगों के पास आया है कि रुकिए पढ़ लें हम यहीं पर से, कि बच्चों के खून में कैंसर के अलामत की मौजूदगी का कैसे पता लगाया जाए और कब पता चलता है?
ये इसके जो मेन साइन सिम्टम्स है ब्लड कैंसर के, और ख़ासकर बच्चों में इसकी जो बुनियादी अलामत है इसमें ये है कि इसमें एक तो बुखार होता है, वैसे रूटीन में बुखार हो जाता है छोटों को भी बड़ों को भी, और बुखार इस तरह की एक चीज़ है कि ये खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी की कुछ अलामत के तौर पर इसको हम देखते हैं कि जिस्म के अंदर कुछ इन्फेक्शन है या कोई इस तरह ख़राबी है, तो ये बुखार की सूरत में नमूदार हो जाती है। तो एक तो ये है कि बुखार है, मुसलसल बुखार है और वो ठीक नहीं हो रही, तो जो ल्यूकेमिया के पेशेंट्स होते हैं, ल्यूकेमिक पेशेंट्स होते हैं, इसमें एक तो ये है कि इसमें मुसलसल बुखार होता है। इसके अलावा जो दूसरे इसके साइन सिम्टम्स है इसमें ये है कि जो बच्चे होते हैं ख़ासकर उनका जो एपेटाइट होता है, जो उनका भूख होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और बार बार उसका ध्यान अगर आप फूड की तरफ लेके आए, उसको आप फोर्स कर ले कि खाना खाए, वो बिल्कुल खाना नहीं खाती, खाने में इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो लीक्यूमिया की जो दूसरी सिम्टम है ये भूख का ख़त्म होना है। इसके अलावा इसमें ये है कि पूरा जो इनका जिस्म होता है, जो ल्यूकेमिक पेशेंट्स होता है, जो बुनियादी अलामत है वो ये है कि पूरे जिस्म पे नीले कलर के दाग बन जाते हैं
अच्छा
पूरे जिस्म में, तो ये एक बुनियादी इसकी अलामत है। इसके अलावा जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं और जो इसके साइन सिम्टम्स है, इसमें ये बात है कि इसके जो हड्डियाँ होती है इसमें वो दर्द महसूस करता है। इसके अलावा जो इनके जॉइंट्स होते हैं उसमें भी वो दर्द महसूस करता है। और इसकी जो दूसरी साइन सिम्टम्स है इसमें ये है कि हर वक्त जो मरीज़ होता है थकावट का शिकार हो जाता है, और हर वक्त वो थकासा रहता है, थकावट महसूस करता है। और इसके अलावा अगर हम और बात कर लें कि इसके जो साइन सिम्टम्स है, तो इसका जो पूरा कलर होता है वो बिल्कुल पेल कलर, इसको हम बोलते हैं जर्द किस्म का एक कलर हो जाता है इसका। तो ये सारे मिला के इसको जो साइन सिम्टम्स है ल्यूकीमिया की बुनियादी यही है।
डॉक्टर साहब, अक्सर बहुत से बाज़ अलामात तो ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर मुसलसल बुखार रहना, ये सब खुद बुखार, जहाँ तक दूसरे लोगों से भी बात हुई है वो ये है कि ये खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी की अलामत होती है बुखार होना। तो दूसरी बीमारियों से ये है कि इसका थोड़ा जैसे मतलब समझ में ना आए कि ये खुदा खासा ब्लड कैंसर है या कोई और बीमारी है।
बुखार के हवाले से
हाँ, बुखार के हवाले से या दूसरी अलामत है।
ये इसके फिर डायग्नोसिस पे हम अगर बात कर लें कि हमें फिर किस तरह पता चल जाएगा कि वाकई ब्लड कैंसर है कि नहीं है, तो अलामत तो यही है कि जो मैंने स्टेप वाइज बता दिए, लेकिन इसकी तशखीस के हवाले से अगर हम बात कर लें कि फिर हमें किस तरह पता चल जाएगा कि ये ब्लड कैंसर है कि नहीं है, तो इसके लिए जो रिकमेंडेड प्रोसीजर्स है वो दो तीन किस्म के रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं। इसमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है पूरे जिस्म के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि सेल नॉर्मल बन रहे कि नहीं बन रहे, किस मकदार में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, हद से ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक बुनियादी चीज़ ये है। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये भी इसके डायग्नोसिस में आ रहा है और जो इसके लिए रिकमेंडेड है कि हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स होता है इसके अगर ये साइन सिम्टम्स है ऑलरेडी, तो हम देखते हैं कि इसका जिस्म किस तरह का है, कलर इसका चेंज हो रहा है कि नहीं, और जिस तरह मैंने कहा कि इसके पूरे जिस्म पे वो नीले कलर के जो दाग बन जाते हैं, ये है कि नहीं है, तो ये भी इसके अंदर है। और जो तीसरी किस्म है वो बोन मैरो टेस्ट, इसके लिए एक रिकमेंडेड टेस्ट है। जो बोन मैरो होता है इसका कुछ हिस्सा, इसको निकाल के एक टिन नीडल के ज़रिए, और इसको हम टेस्ट करते हैं कि जो इसके स्टेम सेल्स होते हैं वो ठीक है कि नहीं है, और जो स्टेम सेल के बाद जो दूसरे सेल्स बनते हैं, जो रेड ब्लड सेल बनते हैं, वो भी इसके ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बन रहे हैं, किस मकदार में बन रहे हैं। तो अगर ये साइन सिम्टम्स है पेशेंट्स के अंदर या जो एक बच्चा है इसके अंदर ये साइन सिम्टम्स हैं, तो बेहतर यही है कि इसी साइन सिम्टम्स को लेके हम इसको पोरी डॉक्टर के पास लेके जाएं और इसके जो रिकमेंडेड ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसको करके हमें फिर पता चल जाता है कि वाकई ये ब्लड कैंसर है कि नहीं है।
डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज़ जो होती है कि जब ब्लड कैंसर खुदा खासा हो गया तो लोग परेशान होते हैं, अखराजात के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक चीज़ हम बताते यहाँ चलें, बहुत दिलचस्प है कि एक दो मराकज़ हैं ईरान में जहाँ पर एक तो ये है कि पूरे तौर से वहाँ पर आपके अखराजात बर्दाश्त कर लिए जाते हैं, खुदा न खासा कोई बच्चा बिलखसूस मुब्तला हो जाए किसी भी नौईयत के कैंसर में, महक सेंटर एक है और ये लोग बहुत ही अच्छा काम इस सिलसिले में कर रहे हैं कि किस तरह से इलाज किया जा सकता है कम से कम खर्चे में, बिलखसूस उनके लिए जो माली लिहाज से परेशान हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बड़ी तश्वीश लोगों को रहती है अखराजात की इसकी, तो इसमें यह है कि इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, खर्चा बहुत है इसके इलाज में।
ये डिपेंड करता है क्योंकि जो इसके ट्रीटमेंट है ये इसके लगे अगर हम रिकमेंड कर लें कि कौन सा अगर ट्रीटमेंट है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें एक एज है कि वो किस उम्र का मरीज़ है, इसके अलावा दूसरी भी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स है कि वो किस किस्म की वो ल्यूकीमिया है, क्योंकि ल्यूकीमिया की हमारे पास बहुत किस्में हैं। तो अगर हम इसके लिए रिकमेंड कर ले कि कौन सी तरीके से हम ट्रीटमेंट कर ले, तो ये एज हो गया इसमें, इसके अलावा ल्यूकीमिया के टाइप हो गई। दूसरे हम ये देखते हैं कि ये ल्यूकीमिया जो है ये किस हद तक इंसान के जिस्म के अंदर है और इसके जो पोजीशन है या वो फैल रही है कि नहीं, और ख़ासकर जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसमें ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है उधर तक ये फैल जाता है, तो इसी बेसिस पे हम फिर थेरापी रिकमेंड करती है। और ये बात है कि ये एक्सपेंसिव थेरेपी है एक हद तक, क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी थेरेपी हम इसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं या जो पेशेंट्स होता है वो किस किस्म की थेरेपी से वो गुजर रहा है, तो इसी के हिसाब पे जो एक्सपेंसेस होते हैं फिर वो डिज़ाइन हो जाते हैं।
और इसमें ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पर अगर जल्दी तशखीस दे दी जाए तो इलाज आसान होता है या नहीं?
बिल्कुल, ये इस तरह का मर्ज़ नहीं है कि बिल्कुल लाइलाज है। लोगों के जहन में ये होता है जब ये सुनते हैं पहली बार डायग्नोज हो जाते हैं कि आपको खून का कैंसर है, तो ये एक डरने वाली सूरत है, क्योंकि
बिल्कुल
कैंसर का नाम सुन के लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं और इसके अंदर जो इनकी कंसिक्वेंसेस होते हैं फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल लाइलाज मर्ज़ नहीं है और इस तरह है कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। और जो इसके ट्रीटमेंट है या जो इसके थेरापीज़ है या जो कीमोथेरापी है, इसके ज़रिए जो पूरी दुनिया में जो चल रहे हैं आजकल जो ट्रीटमेंट, इसके ज़रिए बिल्कुल लोग ठीक हो रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी है, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं इसके इलाज के ज़रिए वो ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें बुनियादी बात यह है कि वो डिपेंड करता है स्टेजेस पे कि वो किस स्टेज पे ये ल्यूकीमिया है। अगर एक स्टेज इस तरह है कि इसके अगर चांसेस नहीं है बचने के, तो अगर इसके इलाज के ज़रिए हम एक इंसान की ज़िंदगी तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन अगर उसका 1 साल है या 2 साल है तो वो ठीक तरीके से वो गुजार सकता है कम से कम, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है या इलाज है उसके ज़रिए बिल्कुल एक अच्छी तरीके से वो ज़िंदगी उनकी गुजार सकती है। तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि लाइलाज बीमारी है या इसका इलाज मुमकिन नहीं, बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है और लोग इसका इलाज ले भी रहे हैं।
हकीमी साहब ने हम लोगों से सवाल पूछा है कि बल्तिस्तान से वो भेजते हैं कि बच्चे बच्चों में ब्लड कैंसर के असल असबाब क्या होते हैं?
असबाब की अगर हम बात कर ले तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात है ब्लड कैंसर के, ख़ासकर बच्चों में। और एक तो एक मोरूसी फैक्टर हो गया या जो जेनेटिक फैक्टर हो गया वो हमने डिस्कस किया पहले भी, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं या जो बाद में इसको ब्लड कैंसर हो जाता है इसकी कौन सी वजूहात है, तो इसमें कुछ चीज़ें इस तरह है जो इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो किसान होते हैं हर वक्त ये बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं, और फलों के लिए और
बिल्कुल
फ्रूट्स के लिए, तो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये इनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, फ्रूट्स के साथ ही चिमट जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये अगर लोग खा रहे हैं और मुसलसल खा रहे हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं पेस्टिसाइड या जो एक किस्म के टॉक्सिकन एजेंट्स हैं, इनका जो असर होता है वो डायरेक्टली जो डीएनए होता है इंसान का, जो खून होता है या जिस तरह खून बनता है, पूरी उस निज़ाम पे हो जाता है, और इसके वजह से फिर ये ब्लड कैंसर की जो केसेस होते हैं या जो चांसेस बढ़ते हैं, ये इसी वजह से होता है। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं हम घरों में या हर एक जगह पे हम स्प्रे करते हैं, ये भी एक जहरीली किस्म का एक मादा है, और हर जगह लोग स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रोडेंट्स के लिए, रोडेंटिसाइड ये चीज़ें स्प्रे हो रही है, तो ये भी एक जहरीला मादा है, और इसकी वजह से भी इंसान मुतासिर होता है और इंसान की जो फिजियोलॉजी है वो मुतासिर हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी सूरत में ये इंसान के जिस्म के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, या जो मुख्तलिफ दूसरी किस्म की जो कारखानों से या जो इंडस्ट्री से जो जहरीली मादे निकलते हैं, ये पानी के साथ शामिल हो जाते हैं, और वही पानी अगर हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं या वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है किसी न किसी तरीके हमारे जिस्म के अंदर फिर चले जाती है, और ये जहरीली मादे ये भी इसी के अंदर शामिल है कि क्यों होता है जो ब्लड कैंसर होता है या जो इस तरह की चेंजेस आ जाती है कि खून के अंदर ये सेल्स जो होते हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस तरह कौन से फैक्टर्स है, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये इसके वजूहत के अंदर शामिल है।
डॉक्टर साहब, इलाज के लिए क्या किया जाता है और कितना कितना वक्त लगता है एक मुकम्मल इलाज में?
ये डिपेंड करता है जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि अगर हम इलाज करते हैं इसके, तो एक तो हम एज ग्रुप को देखते हैं कि किस एज का ये पेशेंट है, इसके अलावा हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, कौन सी किस्म की ल्यूकीमिया है, और ये जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ल्यूकीमिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी के हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, और इसमें एक ये है कि कीमोथेरापी, जो कीमोथेरापीटिक एजेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स होते हैं, और ये जो ड्रग्स होते हैं एक टॉक्सिक किस्म के ड्रग्स होते हैं, और जो सेल्स बढ़ रहे होते हैं या जो इसकी पैदावार होती है वो मुसलसल बढ़ रही है, वो सेल्स की पैदावार हो रही है, तो इस दवाइयों के ज़रिए वो इसको किल करते हैं उस सेल्स को, तो फिर वो स्टॉप हो जाती है इसकी प्रोडक्शन। इसके अलावा जो टारगेटेड थेरापी है, टारगेटेड थेरापी ये है कि जो कैंसर की वल्नरेबल सेल्स है वो कौन से है, और वो दवाइयों के ज़रिए उसकी शनाख्त करके उसको हम टारगेट करते हैं और इसकी प्रोडक्शन को हम रोकते हैं। इसके अलावा जो एक बायोलॉजिकल थेरेपी भी इसके अंदर शामिल है इलाज के अंदर, बायोलॉजिकल थेरेपी में ये होता है कि जो अम्यून सिस्टम होता है इंसान का, जो कुव्वते मुदाफियत होता है, ल्यूकीमिया के अंदर जो अम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, और इसके अंदर ये जो इनकी अपनी खासियत होती है कि किस तरीके से ये डिपेंड करता है हमारे पूरे जिस्म की, और जो एक्सटर्नल जर्म्स होते हैं बैक्टीरिया वायरस वगैरह अटैक करते हैं, तो जो ल्यूकेमिक पेशेंट्स होते हैं इसके जो इम्यून सिस्टम होता है बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, और इसके अंदर ये खासियत ख़त्म हो जाती है कि फिर वो जो एक्सटर्नल सेल्स होते हैं या जो जर्म्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर ले, उसको ख़त्म कर ले, तो जो बायोलॉजिकल थेरापी है इसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि जो इम्यून सिस्टम होता है इसको इस हद तक बढ़ाया जाता है, इसको इस हद तक बूस्ट किया जाता है कि फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो ल्यूकेमिक सेल्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वैसे भी जो रूटीन में जो जर्म्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो अगर एंटर हो जाए तो बायोलॉजिकल थेरेपी के ज़रिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है। और इसके अलावा एक किस्म की जो थेरेपी है इसके लिए यूज़ हो रही है आजकल, वो रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़ होते हैं, उसके ज़रिए वो टारगेट करते हैं जो ल्यूकेमिक सेल्स होते हैं जिसकी हद से ज़्यादा पैदावार हो रही है जिस्म के अंदर, तो वो रेडिएशन के ज़रिए वो ट्रीट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। और आजकल जो बहुत लेटेस्ट रिसर्च है और दुनिया में इस पे काम चल रहा है वो स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी के अंदर जो बोन मैरो के अंदर, जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि जो स्टेम सेल्स होते हैं जो बिल्कुल बुनियाद होता है, जो दूसरी सेल्स बनती है वो स्टेम सेल से ही बनती है, तो अगर स्टेम सेल के अंदर ख़राबी आ रही है और स्टेम सेल्स जो दूसरे सेल पैदा कर रही है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्टेम सेल थेरेपी के अंदर उस तरह के जो सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, उसको हम रिमूव करके हेल्दी सेल्स जो होते हैं या जो नॉर्मल स्टेम सेल्स होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं, उसको इनकारपोरेट करते हैं बोन मैरो के अंदर। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये थेरापीज़ है।
बहुत अहम नुक्ते की जानिब आपने इशारा किया ये स्टेम सेल्स के ज़रिए। आजकल क्या, अब तो चंद साल हो गए हैं कि ब्लड कोड बैंक्स ये सब जो होते हैं वहाँ पे, यानी जो वो लिया जाता है और नाफ का वो पूरा वो जो सिस्टम जो होता है आप समझिए, तो उससे इलाज आसान होता है, 100% मुमकिन हो जाता है, यानी कि हर हाल में ये ठीक होगा, या ये सिर्फ ये है कि एक फैक्टर होता है कि बेहतर इलाज किया जाएगा।
ल्यूकेमिया के इलाज के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो आज से तकरीबन 50-60 साल पहले ये इस तरह का एक मरज़ था कि लोग बिल्कुल इसके सामने बेबस थे और इसका इलाज काफ़ी मुश्किल था और एक्सपेंसिव भी था। लेकिन आजकल ये जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स आ गए हैं, जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आ गए हैं, इसके ज़रिए इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और बाकी जो स्टेम सेल थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी एक इमर्जिंग फील्ड है, एक नया फील्ड है पूरी दुनिया के अंदर, और ये इस तरह का एक फील्ड है कि ये अब ग्रूम हो रहा है, अब इसको और ज़्यादा मतलब इसमें एडवांसेस आ रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ये फाइनल थेरापी है और इसके ज़रिए 100% बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन ये एक नई थेरापी है, एक रिकमेंडेड थेरापी है आजकल और रिसर्च इस पे हो रहा है। लेकिन आइंदा कुछ नियर फ्यूचर में जो एडवांसमेंट इसके अंदर हो रही है तो इसके ज़रिए हम एक बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
एक तो आप बता दीजिए इस हवाले से कि उसके बाद के जो तदाबीर जो होती हैं बीमारी के इलाज के बाद, और ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स अगर कुछ होते हैं तो वो बताइए।
ल्यूकीमिया के जो ट्रीटमेंट है और ख़ासकर जो कीमोथेरेपी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अक्सर, और जो पेशेंट्स होते हैं इसमें ये जो बाल गिरना होता है ये बिल्कुल लाजिमी है, और अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं इसमें ये हो जाता है।
ये बीमारी के नतीजे में होते हैं, इलाज
नहीं,
के
ये
नतीजे,
इलाज के नतीजे में
इलाज के
होता है, क्योंकि
नतीजे।
जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स यूज़ होते हैं, मतलब कम्बिनेशन थेरापी भी है, और ख़ासकर ये जो ड्रग्स होते हैं ये टेबलेट फॉर्म में लेते हैं मरीज़, लेकिन अक्सर जो होता है इंट्रावेनस थेरापी भी होती है इसमें, और इसी की वजह से, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये बाल गिरना इसमें शामिल है, और इसके अलावा नाजिया वॉमिटिंग ये भी इसके अंदर शामिल है, ये इसके बाद हो जाता है क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट है ड्रग्स की, ल्यूकीमिया की नहीं है, इसकी साइड इफ़ेक्ट है। और फिर बात करते हैं हम जो
उसके बाद की तदाबीर।
हाँ, तदाबीर ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं ख़ासकर जो ट्रीटमेंट के बाद होते हैं, ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितने अरसे के लिए है, और अगर ये नॉर्मल हो रहा है तो इसमें ख़ासकर इनकी जो खुराक का ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से हम इसको खुराक दें, और एक हेल्दी फूड इसको देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और एक पूरा जिसम इनका इस ट्रीटमेंट की वजह से भी और ल्यूकीमिया की वजह से भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसके लिए अगर एक हेल्दी डाइट होता है और रिकमेंडेड डाइट होता है कि वो अगर ले ले तो इसमें फ्रूट वगैरह शामिल है, तो इसके ज़रिए इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बढ़ रहा होता है और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ फिर वो आ जाता है।